ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम आपको 34 स्कंद के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। इस श्लोक का उच्चारण सुनीति माता कर रहे हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार से है।
हरे कृष्ण। अनुवाद। मेरे पुत्र, तुम्हें भी श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से उद्धार चाहने वाले व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में श्री भगवान को स्थिर करो और एक पल भी चलायमान हुए बिना उनकी सेवा में व्यस्त रहो।
तात्पर्य
श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की। सुनीति ने अपने पुत्र को जो भक्ति योग की पद्धति बताई है, वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्ति पर कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में श्री भगवान को बसाए रह सकता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन में मुझे बनाए रखो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक ईमानदार पुरुष का यही आदर्श होना चाहिए।
ओम ज्ञानतरंगस्य ज्ञानांजनाय तत्सत्यमेव श्री चैतन्य मनोवृत्तं तारकामेव स्वयं रूपकलां वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं सहायता हे कृष्णा करुणा सिंधु जय श्री कृष्ण जय
प्रसिद्ध श्लोक है।
और इस श्लोक में सुनीति अपने प्रिय पुत्र ध्रुव को बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रही है, और ध्रुव के माध्यम से हम सबको ये संदेश प्राप्त हो रहा है। तो क्या कह रही है सुनीति माता? मेरे पुत्र, तुम्हें भी भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। तो शास्त्रों का ये है निर्णय, क्या हमें परम भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए। ये है शास्त्रों का उपदेश। चाहे आप गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितमृता पढ़ो, इन ग्रंथों का मूल उद्देश्य क्या है? हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और आप सब जो यहाँ उपस्थित हो क्योंकि आपकी श्रद्धा है इस आदेश में। अगर आपकी श्रद्धा नहीं होती तो आप यहाँ क्यों आते? अब आते हो हर शनिवार को, क्यों? क्योंकि आपकी श्रद्धा है इस शिक्षा में। तो ये जो आदेश है पूरे मानव समाज के लिए है। ध्रुव महाराज के पिता का नाम था महाराज उत्थानापादा और उनकी दो पत्नियां थी महाराज की, एक था एक सुनीति और दूसरी थी सुनीति। तो एक दिन ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहे थे, जबकि उनकी सौतेली माँ जो बैठी थी वहाँ, उसने कहा तुम तुम्हारे पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, तुम्हें पहले मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, फिर तुम योग्य बनोगे पिता की गोद में बैठने के लिए। दूसरे शब्दों में वो कह रही थी अब तुम ये शरीर को त्यागो और फिर अगला शरीर ग्रहण करो मेरे गर्भ से, फिर पिता के गोद में बैठ सकोगे। तो ध्रुव ने बड़ा अपमान महसूस किया, उनकी सौतेली माँ ने चिल्ला कर कहा, इतनी जोर से कहा कि महल में जितने नौकर थे सेवक थे सब ने सुन लिया। और ध्रुव अभी माँ के पास पहुँचने से पहले उनके महल के एक नौकर पहुँच गया, जिसने कहा सुनीति माता से आज ध्रुव की सौतेली माँ ने उसे बहुत जोर से डांटा। तो जब ध्रुव अपनी माँ के पास पहुँचे, माँ ने तो कह दिया कि मेरा पिता पर कुछ प्रभाव नहीं। तो बेटे ने पूछा कोई मेरी मदद कर सकता है, और माता ने क्या कहा सुना भगवान मदद कर सकते हैं। तो भगवान कहाँ प्राप्त होते हैं? जंगल में। तो सुनीति माता यहाँ ध्रुव को उपदेश दे रही हैं, क्या भगवान की शरण ग्रहण करो, वो भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। भगवान असल में देखा जाए सब पर दयालु हैं, जो नास्तिक व्यक्ति हैं उन्हें भी सुविधा प्राप्त हो रही है कि नहीं? तो भगवान देखो कितने दयालु हैं। नास्तिक व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करते, वो जब भी उनकी आवश्यकताओं को भगवान पूरा कर रहे हैं। तो भगवान अत्यंत दयालु हैं, खास करके भक्तों के प्रति। इसलिए भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, तुम सारे विश्व को ये सूचना दो कि मेरा भक्त जो है कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो भगवान सबके तरफ दयालु हैं, और खास करके उनके भक्तों की तरफ। और भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जो कि भगवान के आदेश के अनुसार जीवन को बिता रहा है। और भगवान का आदेश कहाँ प्राप्त होगा? शास्त्र में। गुरु साधु शास्त्र, शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। जैसे कि इस संस्था द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है वो 100% निर्भर है किस पर? शास्त्रों पर। जैसे मैं अंदर आया केशवनारी प्रभु कह रहे थे भारत के कोने कोने में मंदिर है, पर असल में इसको के केंद्र है विश्व के कोने कोने में। वो सारे विश्व में लोग इस शिक्षा को अपना रहे हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की जो शिक्षा है पूरे मानव समाज के लिए है। उदाहरण के लिए भगवद गीता और अनेक ग्रंथों का अनुवाद 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो चुका है। आज आप चीन में जाओ तो वहाँ आपको चाइनीज भाषा में श्रीमद् भगवतम भी मिलेगी, पहले बार इतिहास में। तो भक्ति का अर्थ है शास्त्र के आधार पर नियमों का पालन करना। तो शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी। साधु, साधु से ये माना जाता है जो महात्मा आए हैं परंपरा में उनकी शिक्षा। और गुरु, गुरु की एक निशान यह है कि वो हमें वही उपदेश देता है जो कि शास्त्र में हो, जो कि गुरु द्वारा हो। जैसे कि अगर आप देखो प्रभुपाद जी ने जो भी हमें उपदेश दिया वो शास्त्र और साधुओं की शिक्षा के अनुसार है। तो हमें परम भगवान की शरण लेनी चाहिए। और क्या जन्म मरण के चक्र से उदाहरण चाहने वाले व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं। तो असली समस्या क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। जब हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी पहली बार मिले भक्ति सिद्धांत जी से 1921 में, तो भक्ति सिद्धांत जी ने देखा कि युवक पढ़ा लिखा है, अच्छी अंग्रेजी जानता है, भक्ति भावना है। प्रभुपाद जी के पिता का नाम था गौरमोहन डे और बचपन से ही उनके पिता ने उन्हें धार्मिक शिक्षा दी थी, संस्कृत भाषा सिखाई, मृदंगा बजाना सिखाया, कीर्तन करना सिखाया। प्रभुपाद जी के पिता गौरमोहन डे बकायदार संतों की देखभाल करते थे। तो कोई जो संत भी उनके घर में आता था उससे उसकी बड़ी अच्छी तरह खातर करते थे। और जब संत पूछते थे कि हम आपके लिए कुछ सेवा कर सकते हैं तो गौरमोहन डे कहते थे, मेरे पिता मेरे पुत्र को आशीर्वाद दो कि वो भगवान कृष्ण का बड़ा अच्छा भक्त बने, बस। तो जब प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत जी से मिले तो भक्ति सिद्धांत जी ने पहली मुलाकात में ही, जैसे आप जानते हो, या देश दिया था ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। और प्रभुपाद जी ने उस समय कहा, हमारा देश गुलाम देश है, कौन सुनेगा हमारे संदेश को? तो भक्ति सिद्धांत जी ने समझाया, अति स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। तो भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश है। आप विश्व के किसी कोने में जाओ, कोई सुखी नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि भौतिक कार्यों द्वारा सुख प्राप्त होगा तो ये बहुत बड़ी भूल है। अगर हमें असली सुख चाहिए तो क्या है उपाय? भगवान की शिक्षा को स्वीकार करना। तो यहाँ सुनीति ये कह रही हैं कि अगर जन्म मृत्यु के बंधन से उधर छुटकारा चाहते हो भगवान के चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। चरण कमलों की शरण लेने का अर्थ है उनकी शिक्षा का पालन करना, उनके आदेश का पालन करना। और उनका आदेश जैसे हमने कहा शास्त्र में प्राप्त होता है। तो ये उपदेश जो सुनीति माता दे रही हैं, ये उपदेश हम सब के लिए है। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं, 18 श्लोक हैं और भगवान उन भक्तों की कथाएं हैं। ये जो कथाएं हैं ये काल्पनिक नहीं हैं, वास्तविक हैं। ये सब घटनाएं बीती हैं और इन कथा के हर कथा के पीछे एक बड़ा क्या महत्वपूर्ण संदेश होता है। जैसे ध्रुव महाराज के विषय में आप पढ़ते हो कैसे उन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या का पालन किया। जब ध्रुव महाराज घर छोड़कर जा रहे थे जंगल की ओर तो वहाँ कौन पहुँच गए? नारद मुनि ने कहा ये उम्र थोड़ी है भगवान को खोजने की, ये तो खेलने कूदने की उम्र है। नारद मुनि ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे कि, और ध्रुव ने क्या कहा, मैं भगवान को खोजना चाहता हूँ, अगर आप मेरा सहयोग देने को तैयार हो तो दीजिए, नहीं तो मुझे जाने दो। और फिर जब नारद ने देखा कि ध्रुव में इतना दृढ़ भाव है भगवान को खोजने के लिए तो उन्होंने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया था? पर इस कलयुग के लिए कौन सा मंत्र है?
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे।
जिस प्रकार हर बीमारी का अलग इलाज है, हर युग में भगवत प्राप्ति का अलग साधन है। तो ध्रुव महाराज गए जंगल, मधुवन जंगल, वहाँ जाकर उन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की। तपस्या बिना भगवान को प्राप्त करना बड़ा कठिन है, इसलिए भगवतम में कहा गया है तपस्या परम ज्योति भगवतम अधोक्षजम। परम भगवान को समझना बड़ा कठिन है, पर तपस्या के माध्यम से आप उन्हें समझ सकते हो। आज अनेक धर्म के प्रचारक हैं, पर तपस्या के विषय में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है सुनीति द्वारा, ताकि भगवान की सेवा करो और निरंतर सेवा करते जाओ, एक क्षण के लिए भी सेवा से रुको मत, सदा उनकी सेवा में रहो। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव। जैसे कि प्रभुपाद जी ने श्लोक के तात्पर्य में कहा है, ये है भक्तियों का सिद्धांत जो महारानी कुंती अपने प्रिय पुत्र को दे रही है। और हर व्यक्ति अपना कर्तव्य कर सकता है और भगवान की सेवा भी कर सकता है। और इस विषय में भगवान का आदेश है गीता में, जिसमें भगवान ने क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम स्मरणाय विरचा। मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए हे अर्जुन तुम इस युद्ध में लड़ो। तो सुनीति माता कह रही है 24 घंटे भगवान की सेवा में रहो। तो आप कहोगे 24 घंटे तो विश्राम कब करेंगे, भोजन कब खाएंगे? तो आपका विश्राम भी भक्ति माना जाएगा अगर आप 6-7 घंटे विश्राम के पश्चात बाकी समय भगवान की सेवा करोगे, तो वो भी सेवा मानी जाएगी। तो ये होना चाहिए हम सब का भाव, और साधु संगत में ये भाव बढ़ता है। नारद मुनि ने कहा है कि हम 3 प्रकार की संगत प्राप्त कर सकते हैं। एक है उनकी संगत जो भक्ति में आपसे अधिक ज्ञान रखते हैं, दूसरे हैं जो आपके बराबर के, और तीसरे जिनके पास आपसे कम ज्ञान है। तो जब आपको उनकी संगत मिले जो भक्ति में आपसे ज़्यादा एडवांस हैं, तो हमें क्या भाव प्रकट करना चाहिए? खुशी का भाव, क्योंकि हमें ऐसा संदेश सुनने में आएगा जिसका लाभ उठाकर आप जीवन को सुखी बना सकोगे। और जब समानता का व्यक्ति मिले तो उससे मित्रता का भाव रखना चाहिए, और कम ज्ञान का व्यक्ति मिले तो उसके साथ क्या करना चाहिए? दया, दान, दया की भावना प्रकट करनी चाहिए। तो शास्त्र में कहा गया साधु संगत, तो इस कौन संस्था द्वारा प्रयास किया जाता है सबको भक्ति का संदेश पहुंचाने के लिए। क्योंकि अगर आप समाज की समस्या को हल करना चाहते हो तो केवल यही है एक उपाय। आज आप देखते हो भौतिक संसार की समस्या बढ़ते जा रही हैं या घटते जा रही हैं? चिंता इत्यादि तनाव बढ़ते जा रहा है घटते जा रहा है? तो इस भयंकर वातावरण में एक ही उपाय है समाज के लिए, वो है भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण। और कलयुग में यही एक साधन। चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं भगवान हैं, जो प्रकट हुए थे लगभग 520 साल पूर्व, उनकी भविष्यवाणी थी पृथ्वी में जितने नगर गाँव हैं सब जगह यह हरिनाम पढ़ते हैं। एक महान संत ठाकुर भक्ति विनोद जी, उनकी भविष्यवाणी थी कि एक दिन विश्व के हर कोने से भक्त आएंगे श्रीदा मायापुर में, और वहाँ के बंगला भक्तों के साथ मिलकर नाचेंगे और गाएंगे। तो जैसे आप जानते हो आपके पंजाबी बाग के अनेक भक्त हरसा नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, ये सब नवद्वीप परिक्रमा में आप में से कौन कौन गए थे? अच्छा, तो आपने देखा होगा कि हजारों भक्त आ रहे हैं सारे विश्व से, ये सब कोई 8000 भक्त आए थे विश्व के कोने कोने से, और भी अधिक भक्त आए, पर सबसे बड़ी समस्या क्या है, और रहने की जगह नहीं, तो कई लोग आते नहीं क्योंकि उन्हें पता कि कमरा नहीं मिलेगा। तो ये थी चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी कि हरि नाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगा। और चैतन्य महाप्रभु जी ने इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन बहुत ही सरल बना दिया है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम करो नरम। हरि नाम का लाभ तो हर स्थिति में है, तो जैसे आप कई बार सुन बैठे हो, जितने ध्यान से लोगे उतना अधिक लाभ उसे पहुंचेगा। ध्यान से लेने का अर्थ है कम से कम जब आप जप माला कर रहे हो उस समय केवल माला का कार्य करो, ये नहीं कि माला कर का जाप कर रहे हो अनेक और कार्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या आदेश दिया है? पहला आदेश था चैंट हरे कृष्णा, और ये आदेश है सबके लिए, चाहे आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या संन्यास, वीर थको वाणी थको सदा हरि बोले थको, आप सब क्या करो, कृपा करके हरि नाम का उच्चारण करो। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा गीता पढ़ो और भगवतम पढ़ो। गीता में क्या है? भगवान का संदेश आदेश पूरे मानव समाज के लिए। आप ऐसे कितने भक्त हो जो रोज भगवद गीता पढ़ते हो? बहुत कम, कोई 20-25 के हो। सबका ये निर्णय रहना चाहिए कि कम से कम एक श्लोक हम रोज पढ़ें। चैतन्य महाप्रभु ने हमें आदेश दिया है कि हमें रोज डेली एवरी डे क्या पढ़ना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें आप में से कौन कौन रोज अखबार पढ़ते हो, तो मैं ख्याल से सब हाथ उठाएंगे, अखबार या टीवी या रेडियो। तो गीता के श्लोक पढ़ने के लिए भी समय निकाले। तीसरा आदेश क्या था चैतन्य महाप्रभु का? साधु संगत। तो ये कार्यक्रम शनिवार को होता है, इसके अलावा अनेक भक्ति वृक्षा के कार्यक्रम भी होते हैं, नामाहत के कार्यक्रम होते हैं, सत्संग होते हैं, उनका लाभ उठाइए, इन कार्यक्रमों में आइए, साधु संगत का लाभ उठाइए। और साधु संगत में आपको परम भगवान का गुणगान सुनने को मिलेगा। तो चौथा आदेश क्या था, कौन बताएगा? हाँ बताइए। भगवान के आर्चक विग्रह की उपासना। आपके इस मंदिर में श्री श्री कृष्ण बालराम जी विराजमान हैं, जगन्नाथ सुभद्रा बालराम जी हैं, राधिका रमन जी भी हैं। राधिका रमन जी क्या छोटे साइज के हैं ना? आपको पता है क्यों इतने छोटे हैं? क्योंकि पंजाबी बाग में जो हमारा पहला मंदिर खुला था उस समय हमारा मंदिर था एक छोटे गैरेज में। तो गैरेज तो आप जानते हो छोटा होता है, तो गैरेज के साइज के मुकाबले में उन्होंने मूर्तियाँ छोटी ली। अब आप सबकी भक्ति के कारण भगवान ने पंजाबी बाग में बड़ा मंदिर दे दिया है, पर विग्रह तो वही रहेंगे। तो आर्च्य विग्रह की उपासना करो। आर्च्य विग्रह चाहे छोटे हो या बड़े, भगवान स्वयं आर्च्य विग्रह में उपस्थित होते हैं। भगवान हरि नाम के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं, भगवान शास्त्र की शिक्षा द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं, और भगवान अपने आर्च्य विग्रह के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं, और भक्तों द्वारा भी भगवान प्रकट करते हैं। कई बार हमें भक्तों द्वारा शिक्षा सुनने में मिलती है, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो ये आप सबसे निवेदन कि योजना ऐसी बनाइए कि आप जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सको, और भगवत गीता में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है इस विषय पर, जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहते हुए जल को छूता नहीं, उसी प्रकार भौतिक संसार में रहते हुए भौतिक संसार के दोषों से हमने बचना है। तो दोषों से कैसे बचोगे, कैसे बचोगे, क्या करके, जैसे इस समय आप मच्छरों से कैसे बच रहे हो, पंखे के सहारे हैं। तो उसी अगर आपने माया से बचना है तो क्या है उपाय, यह हरि नाम। तो आप सबसे ये निवेदन है, इसका लाभ उठाइए। भगवान ने हमें एक जीव दी है, दो कान दिए हैं, अनेक इंद्रियां दिए हैं। तो जीव द्वारा भगवान का गुणगान करो, कानों द्वारा भगवान का गुणगान सुनो, नेत्र द्वारा शास्त्र पढ़ो, और जीव द्वारा भगवान के प्रसाद को स्वीकार करो। हमारा ये नियम होना चाहिए, खाएंगे तो केवल क्या खाएंगे, आप में से कितने भक्त जो केवल कृष्ण प्रसाद खाते हो, अच्छा सब नहीं। तो कृष्ण प्रसाद खाओगे तो कृष्ण प्रसाद खाने से ही अशुद्ध मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहे हैं। तो ये आपके सामने ये निर्णय है, पाप खाना है या प्रसाद खाना है। अगर प्रसाद खा सकते हो तो क्यों नहीं खाओ, है कि नहीं। और तो ये निवेदन आप सबसे, आप सबसे, और इन ग्रंथों को पढ़ो। प्रभुपाद जी ने बड़े प्रयास परिश्रम से इन ग्रंथों का अनुवाद किया, और जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान देखते हैं ये भक्त मेरे मुझे समझना चाहता है, तो उसे बुद्धि देते हैं मुझे समझने के लिए। तो आप सबके यहाँ भारी हैं कि आपने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया है, अब कृष्ण भक्ति को आगे प्रचार बढ़ाने में सहयोग दे रहे हो। सबसे निवेदन है कि आप सुनीति माता जी का जो उपदेश है इस श्लोक में, उसको स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। काफी देर हो गई, मैं पड़ोसियों को जगाना नहीं चाहता। तो आप ऐसे कितने भक्त 16 माला का जाप रोज करते हो, अच्छा सब नहीं। तो प्रयास करो माला का जाप बढ़ाने के लिए। जो 4 से 8 कर रहे हैं उनसे निवेदन है वो बढ़ाएं, जो 8 कर रहे हैं वो 12 करें, जो 12 कर रहे हैं 16 करें। और प्रयास करोगे तो हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। राष्ट्र भक्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।
तो हम लोग महाराज का धन्यवाद करेंगे। तो महाराज
धन्यवाद।
हरि ओम।